सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब कमबख्त रुला दे, और फकीरों के द्वार पर भीख मांगकर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। ऐसा फकीरी अमृत जिसके जीवन में नहीं आया, वो धनवान होते हुए भी वास्तविक में धनवान नहीं है, सत्तावान होते हुए भी वास्तविक सत्तावान नहीं। जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है वो धनवान किस बात का है? जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है वो सत्तावान किस बात का है? जिसके सिर पर मौत का चक्र घूम रहा है उसके सौंदर्य का क्या वैल्यू है? कबीरा, यह जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता तेहु जानियो जाको राम नाम धन होई, सियावर रामचंद्र की जय। ये सारा जग निर्धन है, धन तो उस आत्मदेव के खजाने में से मिलता है, और ये अद्भुत ऐसा खजाना है कि आज तक दुनिया में जितने भी, केवल इंडिया की बात नहीं करता हूं, केवल इस मृत्युलोक की मरण धर्म आदमियों की बात नहीं करता हूं, इस पृथ्वी की नहीं, ये तो बहुत छोटी सी है, ये पृथ्वी तो एकदम छोटी सी है, जरा सी नन्ही सी है, ये तो सूर्य का 13,00,000वां हिस्सा है, एक छोटा सा ग्रह, और आकाश गंगा में कई सूर्य है, तो उन कई सूर्यों को, कई आकाश गंगाओं को, कई लोक लोकांतरों को, देवों को, गंधर्वों को, यक्षों को, किन्नरों को, मानवों को, दानवों को, जहां से सत्ता मिलती है, जहां से सौंदर्य का दान मिलता है, जहां बुद्ध से बुद्धि का बल मिलता है, चतुरों को जहां से चतुराई मिलती है, दयालुओं को जहां से दया करने की क्षमताएं मिलती है, कृपालुओं को कृपा बरसाने की योग्यता का दान जहां से मिलता है, और प्रेमालुओं को जहां से पवित्र प्रेम करने की निगाह आती है, प्रेम, दया, कोमलता, सच्चाई, सरलता, सद्गुण हजारों युगों से पहले जहां से प्रकट हो रहे थे और अभी होता रहेगा और बाद में भी मिलता रहेगा, वो अखुट खजाने में आज तक कोई कमी नहीं आई। बुद्धिमान की बुद्धि जिस सत्ता से स्फुरित होती है, सुंदर व्यक्ति का सौंदर्य जिस परम सौंदर्य आत्मा से निखरता है, उस आत्मदेव के खजाने की 3 मिनट के लिए मुलाकात हो जाए तो जीव का हृदय पवित्र हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसा आनंद स्वरूप जगत के विज्ञानियों को, विद्वानों को, धारा शास्त्रियों को, गणित शास्त्रियों को, मनोविज्ञानियों को, साधुओं को, फकीरों को, योगियों को, तपियों को, जपियों को, और कुशल प्रसिद्ध व्यक्तियों को जहां से सत्ता, स्फूर्ति, चेतना और ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान के भंडार में से एक तिनका भी आज तक फूटा नहीं। इसीलिए ऋषि कहते हैं पूर्ण मदह पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण तुम्हारे हृदय में उसकी चेतना है, उस चेतना का त्याग करके, उस चेतना को पीठ देकर जो जगत के सुखों के पीछे पड़ा है, मानव अपने पैर पे कुहाड़ी मार रहा है बेचारा, कावा दावा झूठ कपट शराब कबाब की शरण लेकर मरण धर्मा आदमी सुखी रहना चाहता है, वो अपनी एक जिंदगी नहीं बिगाड़ता, लेकिन भय शोक चिंता की चिता में जलते जलते अनंत जन्मों में नरक और पशुओं की योनियों में दुख भोगने का सामान ले जाता है बेचारा। ये आदमी तो बड़ा चलता पुरजा है, इसको ऐसा उसको ऐसा करके पटा के अपना, इसने तो महल पे महल खड़ा कर दिया, इसने तो गाड़ी पे गाड़ी ला दी, इसने तो ये कर दिया, झूठ कपट और पर पीड़न करके किसी ने अमीरी कर दी तो वो बड़ा नहीं है महाराज, वो चलता पुरजा है। भैया सच्ची बात कहते, चलता पुरजा है, ये पुरजा चलता ही रहेगा, 4 पैर की माँ में भी चलता रहेगा और 2 पैर वाली माँ के गर्भ में भी ये चलता रहेगा, 84,00,000 जन्म तक ये पुरजा चलता रहेगा, तेरी बात सच्ची है। तो जो छल कपट का सहारा लेकर इस नश्वर शरीर को सुखी रखना चाहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अशरीरम शरीरेषु, कठवली उपनिषद का वचन है, अशरीरम शरीरेषु, शरीर में होते हुए भी ये आत्मदेव अशरीरी है, जैसे घड़े में होते हुए घटाकाश भी घटाकाश नहीं है, वो महाकाश ही है, शकोरे में और सुराई में आकाश होते हुए भी आकाश सुराई और शकोरा के बंधन में नहीं रहता, ऐसे ही तुम माई के शरीर में, भाई के शरीर में, डॉक्टर के शरीर में, मरीज के शरीर में, सिद्धपुर के शरीर में और मुंबई के शरीर वालों में, हिंदुओं में और मुसलमानों में, ईसाई और पारसी भावों में दिखते हो, लेकिन वास्तविक में तुम ये हो ही नहीं, बिल्कुल झूठी बात, सरासर झूठ, ये केवल थोप दिया गया तुम्हारे मन में, ये भ्रमणा क्रिएट कर दी गई, बिना मन के संकल्प के तुम नहीं दिखा सकते कि मैं गुजराती हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं तोला हूं, मैं शेर हूं, मैं सवा शेर हूं, मैं ढाई शेर हूं, तुम नहीं दिखा सकते। ये तुमने सुना है, ये तुम्हारे मन की कल्पना है लाला। तुम्हारे मन की कल्पना जहां से स्फुरित हुई, वास्तविक में तुम्हारा आत्मा वो है। तुम कल्पना के शिकार मत बनो, तुम तो संतों के प्यारे और भगवान के दिल के तारे हो, ऐसा तुम्हारा आत्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम मेरा अंश है, तू सनातन है। कब तक तू भ्रांति में इस सड़ी गली हार्ड मास की कुठरी में रहकर मैं करेगा ओ बलारो मिठाई का के ओ पिटारा मा पड़ो के ओ अरे खरपियो वाग से ले भाग से ओ कब तक करेगा मैं कब तक करेगा। इस मैं देह को मैं मानकर मैं करके तो कई चले गए जिनकी मैं दिखी तक नहीं, जिन्होंने अपने शरीर में होते हुए अशरीर में मैं के खूंटे गाड़ दिए। आहा वो तो धन्य हो गए, लेकिन उनकी मीठी निगाहें जिन पर पड़ी, उनके मीठे वचन जिन्होंने दोहरा दिए, उनके दिल भी धन्य हो गए। ऐसे ब्रह्मवेताओं के वचन जीवन में ले आओ। समय थोड़ा है, हजारों जन्म का काम एक ही जन्म में करना पड़ेगा। हजारों जन्म के संस्कारों को काट छांट के उठा अर्धुत करके आत्मज्ञान का दिया जलाना पड़ेगा। तुच्छ वस्तुओं में और तुच्छ बातों में अपने समय और शक्तियों को व्यय मत करो, न जाने मौत कब केश पकड़ ले। सेठ मुंह छेड़ता हुआ बुद्धू हलवाई को बोलता तो चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं, दिवाली आती है ब्याज पे पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, तो चिंता नहीं कर, खूब धंधा कर, मैं बैठा हूं। के स्वामी फलाने नाम लिख के गए, ऐसा हो गया, गए वो पुलिस में अपनी पहचान है, तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं। छाती ठोक के चार बार मूछ पे ऐंठते हुए कि मैं बैठा हूं, आधा घंटा में टेलीफोन आया कि सेठ चले गए सदा के लिए और मैं बैठा हूं दावा किया। कब तक ये मैं बैठेगा भैया, कोई भरोसा नहीं। इस देह को मैं मानकर तुम बिठाने का भरोसा करो तो कोई भरोसा नहीं। देवताओं के 2 महीने में तुम्हारे 60 वर्ष पूरे हो जाते, ऐसे देवता 100 साल जीते हैं, और ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 इंद्र राज्य करके रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो तुम्हारी आयुष्य इस छोटी सी इसमें मैं करके, जिससे इंद्र भी नाचता है और ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं, उस आत्मा को निहार कर अपना बेड़ा पार कर लो। छोटी छोटी बातों में कब तक उलझते रहोगे। 10-20-50 लाख या 10-20-50 करोड़ भी मिल जाए, फिर भी तुम्हें अगर आत्मज्ञान नहीं तो तुम ठगे गए। तो राजा जनक सुखदेव जी को कहते हैं कि हे मुनि शार्दुल, देव गंधर्व मानव दानव के देह में आकर ये जीव अपने को मैं मानने की गलती करता है। वास्तविक में इसका वास्तविक स्वरूप अनंत है, असीम है, जिसमें अनंत अनंत लोक और लोकपाल और लोकांतर हैं, जिसमें अनंत अनंत भूत जात पैदा होकर लीन हो जाते हैं, वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। तुम न मुनि सुखदेव मुनि हो, न व्यास के पुत्र हो, न ब्राह्मण हो, न देहधारी हो, तुम देह में होते हुए विदेही हो। और अनंत देवताओं को जहां से सत्ता मिलती है वो तुम हो, अनंत दानवों को जहां से स्फूर्ति मिलती है वो तुम हो, अनंत लोकपालों से लोकपाल जहां से सत्ता स्फूर्ति लाते हैं वो चैतन्य तुम हो, जहां से यमराज नियमन करने का सामर्थ्य लाता है वो तुम हो, सांख्यवादियों के पुरुष तुम हो, योगियों के आत्मा तुम हो, और भक्तों का शुद्ध चैतन्य आत्मदेव तुम ही हो। ए सुखदेव मुनि, तुम अपने को देह मानने की गलती छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को निहारो, संदेह मत करो, वही सदा सम स्वरूप है, उस सम स्वरूप में स्थिर हो जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जनक का थोड़ा सा उपदेश, सुखदेव जी महाराज की जो संशय की वृत्ति थी वो चली गई और सुखदेव जी महाराज फकीर हो गए। फकीर माना निसंशय हो गए, संशय की उन्होंने फाकी कर ली और महाराज एकांत में जाकर निर्विकल्प आनंद में मस्त रहे। जब परीक्षित के पुण्यों ने जोर किया, सुखदेव जी को क्या लेना था, कोई फल लेना था या कोई फ्रूट लेना था या कोई दान दक्षिणा लेना था, नहीं, परीक्षित के पुण्यों ने जोर किया तो सुखदेव जी महाराज अपनी अलमस्त मस्ती में चलते चलते गंगा किनारे पहुंचे। रास्ते में पागल लोगों ने सुखदेव जी को पागल कहा है, मूर्ख लोगों ने सुखदेव जी को मूर्ख कहा है, ढोंगियों ने सुखदेव को ढोंगी कहा है, भक्तों ने सुखदेव को भक्त कहा है, संतों ने सुखदेव को संत कहा है, लेकिन सुखदेव मानते हैं कि सब कहने और सुनने की मन कल्पित बातें हैं, मैं जो हूं वो हूं, असंगो अयम पुरुष केवल निर्गुणश्च। जब सभा में आए हैं ऊंचे सिंहासन पर, सुखदेव जी महाराज सुवर्ण के आसन पर विराजमान हुए। परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि भगवान 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसको जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कैसे हो सकती है, कोई उपाय बताओ। मैं भी आपको कह रहा हूं कि 7 दिन में तुम्हारी भी मृत्यु होने वाली है, या तो सोमवार को मृत्यु होगी या तो मंगल को, मंगल नहीं तो बुध जरूर है, बुध नहीं तो गुरु, गुरु नहीं तो शुक्र, शुक्र नहीं तो शनि, नहीं तो फिर इतवार, नहीं तो सोमवार। इन 7 दिनों के अंदर कोई ना कोई दिन को आपकी मृत्यु होगी, होगी और होगी, जिसको आप मैं मानते हैं। लेकिन ये अष्टावक्र मुनि का ज्ञान और यमराज का कठवली वाला ज्ञान अगर अशरीरम शरीरेशु आपको मिल गया, तो ये देह की मृत्यु होते समय भी इस ज्ञान की आपको थोड़ी सी फुरना भी आ गई, स्मृति भी आ गई, तो आप सचमुच में देह की मृत्यु की घटना के समय भी आप समाधि के सुख का अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा कठवली का उपदेश है, ये ऐसा ब्रह्म विद्या का अमृत है, ये टिजड़ी का व्रत या सातम का या सती सातम का या शीतला का या गोगा का व्रत का उपवास का बात नहीं है, ये कोई धर्म कर्म और नियम की उपवास की बात नहीं है, ये तो जीव अपना वास्तविक शिव स्वरूप को पहचान के सबसे पार हो जाए ऐसी ब्रह्म ज्ञान की ऊंचे में ऊंची बात है। आदमी धार्मिक होता है तो समाज के काम आता है, जीवन मुक्त होता है तो अपने आप के काम आता है, और भक्त होता है तो भगवान के काम आता है, और अपने आप को जब पा लेता है तो विश्व के काम आ जाता है, क्योंकि विश्वम भर के साथ उसकी एकता हो जाती है। विलासी आदमी अपने काम भी नहीं आता और अपने वालों के काम भी नहीं आता है, वो अपना भी शोषण करता है और अपने वालों का भी शोषण करता है। ऐसा कोई भोगी नहीं मिलेगा जिसके संपर्क में आने वाले का और उसका शोषण ना हो, और ऐसा कोई योगी नहीं मिलेगा कि जिसके संपर्क में आने से अपना और उनका पोषण ना हो। योगी अपना भी पोषण कर लेते हैं और अपने संपर्क में आने वालों का भी ब्रह्म विद्या के रस से पोषण कर लेते हैं। भोगी इंद्रिय गुलामी से अपना भी शोषण कर लेते हैं और अपने संपर्क में आने वाले का भी शोषण कर लेते हैं। तो भोग की वासना क्यों होती कि सुख की इच्छा, और सुख जहां है वहां की खबर नहीं है, और जहां सुख का आभास है वहां के आकर्षण से ये जीव बेचारा ठगा जाता है, फिसलता फिसलता हजार गलतियां करता हुआ भी आदमी अगर निराश न हो और कदम आगे रखे तो उसको अंदर का प्रकाश मिल सकता है। कभी भी जीवन में निराशा नहीं लानी चाहिए, हताशा निराशा पलायनवाद को जीवन में स्थान मत दो। ऐसा कौन है जो एकदम सीधा चल पड़ा है, चलते हैं गिरते हैं फिसलते हैं, आपने चले थे एक दो साल के थे तो क्या दौड़ने लगे थे क्या महाराज, चालन गाड़ी लाए थे, पप्पा का हाथ पकड़ा था, मम्मी का हाथ पकड़ा था, बहन का हाथ पकड़ा था, भाई का हाथ पकड़ा था, नौकर का चाकर का हाथ पकड़ते 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 चलना सीख गए। ऐसे ही कभी योग का हाथ पकड़ा, कभी निष्काम सेवा का हाथ पकड़ा, कभी भक्ति का पकड़ा, कभी कीर्तन का पकड़ा, कभी गुरुदेव की कृपा का हाथ पकड़ा, तो कभी सुखदेव जी के उपदेश का हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ते पकड़ते बेड़ा पार हो जाएगा, चिंता की क्या बात है। कठवली कहती है अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेय व्यवस्थितम महंतम विभुवात्मानम मत्वा धीरो न शोचते। जो अशरीर में शरीर रहित, जो शरीर में शरीर रहित अनित्य में नित्य रूप है, उस महान सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान शोक नहीं करता। तरती शोकम आत्मवित, आत्मवेता शोक को पार कर जाता है। ये आत्मज्ञान की कथा सुन रहे, इसको 13 निमेश सुनने से जग दान करने का फल होता है, ये ब्रह्म विद्या सुनने से 17 निमेश आंख के 17 पलकारे पड़े उसको 17 निमेश बोलते हैं, वो आत्म विचार में विश्रांति पाने से बाज्य पे यज्ञ करने का फल मिलता है, आधा घंटा ब्रह्म विचार में मस्त रहने से अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। जिन संतों का दर्शन करके संसारी लोग पाप ताप विनिर्मुक्त होते हैं, ऐसे संत भी इस आत्मदेव की मस्ती से ही तो दूसरों को पवित्र करने का सामर्थ्य लाते हैं। कोई फैक्ट्री थोड़ा है उनके पास डीजल से चलने वाली, हजारों हजारों लोगों के जीवन को पवित्र करने का सामर्थ्य भी परम पवित्र उस अंतर्यामी से ही लाते हैं, और वो तुम्हारे पास है, वहीं की कुंजी ले लो और अपना ताला खोलो, हो जाओ निहाल। कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे, मौत के आगे घुटने टेकते रहोगे, सिजदा करते रहोगे? जब घर में ही खुदाई देखी तो काबे में सिजदा कौन करे? अपना सनम सन्मुख पिया देखा तो और की पूजा कौन करे? आ जाओ अपने दिल में। कब तक घुटने टेकते रहोगे तुच्छ विषयों के लिए, तुच्छ वाहवाही के लिए, तुच्छ दिखावे के लिए, तुच्छ मनोरंजन के लिए? कब तक घुटने टेकते टेकते जिंदगी घिसा डालोगे? ओम हौम 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 हौम। भरतरी की वो पिंगला मर गई रानी, भरतरी रोए, खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। पिंगला मरी या अंगला मरी, कोई रानी मरी थी। जय जय भरतरी। ऐसा रोए महाराज, भरतरी कहे कि तेरे बिना भी क्या जीना। भरतरी को बड़ा शोक हुआ। वजीर समझाते हैं कि महाराज ये शरीर, शरीर में अशरीरी आत्मा तो अमर है, देह तो है, बस मटका फूटा और क्या। लेकिन अब हिम्मत तो नहीं करते, मन में ही समझा रहे हैं ऐसा करते 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 महाराज वो तो रानी की अर्थी गई, तो भरतरी उसके पीछे पीछे। जोगी गोरखनाथ को पता चला कि है तो राजा बुद्धिमान, लेकिन काम विकार ने बुद्धि का नाश कर दिया, भोग की आसक्ति ने बुद्धि को बेईमान बना दिया। वासना बड़ी अंधी होती है, अर्थी दोषो न पश्यति। गोरखनाथ जी आइडिया से सामने से आ रहे, और गोरखनाथ जी के हाथ में भिक्षा मांग के खाने के लिए वो मिट्टी के हांडी थी, सिंधी में चाहूं दखी, वो हांडी थी। और गोरखनाथ जी ने क्या करा, आइडिया से हांडी को ऐसा पछाड़ दिया, हाथ में से छूट गई ऐसे ढंग से, हांडी फूटी। हांडी फूटी तो गोरखनाथ रोने लगे कि हाय रे हाय मेरी हांडी, अब मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा, तुझी में तो खाता था, तुझी को सिराने रखकर सोता था मेरी हांडी, तेरे बिना मेरा जीना कैसे, मैं जब पानी पीता था तब भी तू साथ रहती थी, और जब भोजन करता था तब भी तू साथ रहती थी मेरी हांडी रे हांडी, जब बरसात आती थी तो मैं अपना वस्त्र तुझ में छुपा कर पिटारी का काम लेता था मेरी हांडी रे हांडी। जैसे भरतरी बोलता था कि भूख लगती थी तू मेरे पास बिठा कर मुझे पिरोसती थी, थकान लगती तू मेरी पैर चंपी करती थी, और जब मन उदास होता था तू मनोरंजन देकर आनंद कराती थी, ये मेरी रानी रे रानी। जैसे वो बोलता था ऐसा ये हांडी को प्यार कर रहा था, बड़ा लवर हो गया, मारी हांडी रे हांडी तारा बिना वे केम चाले। जब कभी बरसाती ओले पड़ते तो मैं तेरे को सिर पर रखकर टोपे का काम ले लेता था, अरे हांडी जब गर्मी पड़ती थी तो बरसात पड़ती और गर्मी पड़ती तो मैं छाते का काम तेरे से लेता, मेरी हांडी मेरा क्या होगा। भरतरी अपना रुदन भूलकर ये बाबा जी के रुदन को देख रहे हैं, और भरतरी ने समझाया कि बाबा जी ये रोने से क्या काम चलेगा, जरा सी हांडी फूटी और इतना रो रहे हो, तुम तो समझदार साधु महात्मा हो। बोले साधुओं को सिखाने वाले तुम बुद्धू कहां से आ गए, मैं तो रो के काम चलाता हूं, तू तो जलने को तैयार हुआ है। मैं तो हांडी के वियोग में रो के काम चला रहा हूं और तू तो सता होने को तैयार हुआ है, तू अपने को सीख दे जरा, मेरे को क्या सिखाता है। अज्ञानी ज्ञानवानों को सिखाने को ठेका ले चल पड़े हैं, तू पहला अपना अज्ञान तो मिटा। महाराज भरतरी अपने दुनिया में तो बहुत ऊंचे आसन पर थे, लेकिन गोरखनाथ की कृपा के आगे बहुत नन्हे दिखे। भरतरी को वैराग्य हुआ है और भरतरी गोरखनाथ के चरण पकड़ के कहते हैं कि महाराज अब कृपा करके वही दो जो शरीर में रहते हुए अशरीरी है, मरने के बाद भी जिसकी मृत्यु नहीं होती है, और दुख में जिसको दुख नहीं पहुंचता है, और जो इसको संसारी सुख छू नहीं सकता है, जिसको संसारी दुख छू नहीं सकता है, जिसको मान और अपमान छू नहीं सकता है, ऐसा मुझे आत्मदेव का अपने मय का आप ज्ञान दीजिए। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। आज तक देह की शरण में था, इंद्रियों की शरण में था, पत्नी और परिवार की शरण में था, जन्म और मृत्यु के शरण में था, भय और व्याधि के शरण में था, लेकिन अब महाराज मुझे अपनी शरण में रहने दो, अपने आत्मदेव की शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो।
सिर पे छाया घोर अंधेरा, कर्तृत्वम अकर्तृत्वम भोक्तृत्वम, ये अंधेरा छाया हुआ है। एक तो कर्तृत्व आसक्ति होती है, काम किए बिना रहा ही नहीं जाए, बाबरियो भूत लागे हो खोपड़ी में, कहीं ने कहीं करवा जोइए, अन कहीं ना हो तो बैठो 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 आ फरास ना दोरा तोड़े, बैठो 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 चादर फाड़े, बैठो 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 खुरपो चलावे नाक में, करे बिना रहे नहीं जाए। अरे कथा सुन रहा है कि खुरपा चला रहा है तू? तो कईयों को कर्तृत्व आसक्ति होती, कईयों को भोक्तृत्व आसक्ति होती, ये भोगू ये भोगू ये भोगू, अरे जितना माणिया सुखिया खुशियां उतना भया रोग, जितना भोग ज्यादा भोगेगा उतना तन मन बुद्धि पुण्य नाश हो जाएगा। कईयों को भोक्तृत्व आसक्ति होती है, कईयों को कर्तृत्व आसक्ति होती है, कईयों को अकर्तृत्व आसक्ति है, मैं अकर्ता अकर्ता अर्ता, कईयों को भोक्तृत्व आसक्ति होती है। लेकिन ये सारी आसक्ति चित्त का दोष है, और चित्त का दोष तब तक रहता है जब तक निर्दोष मैं स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। अपने निर्दोष चैतन्यमय का साक्षात्कार हो तो महाराज ये दोष निवृत्त हो जाते हैं, नहीं तो कोई न कोई दोष चित्त में घुस जाता है। जैसे पिटारे में बिलाड़ा घुस गया, मिठाई खा के गुड़ घी खा के रोटियां चबा के मजे से बैठ गया, बच्चे रोटी लेने जाते तो बिलाड़ा बोलता हूं, बच्चे डर गए फिर जाते हूं, जब किसान आया लगा खुरपा तो हूं करता हुआ बिल्ला भाग गया। ऐसे इस देह रूपी पिटारे में जीव में मान बढ़ाई खा के अहंकार बढ़ा के बोलता हूं, जब गुरु के ज्ञान का खुरपा लगता है तब हूं गायब हो जाता है और वास्तविक में पिटारा खुला हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। जय राम जी की बोल दो। ऐसे ही देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, तुम देह में होते हुए भी वास्तविक में तुम ये देह नहीं हो भैया, तुम किसी की पत्नी नहीं हो, किसी की बेटी नहीं हो, किसी की माँ नहीं हो, तुम किसी के बाप नहीं हो, किसी के बेटे नहीं हो, किसी के मित्र नहीं हो, शत्रु नहीं हो, मित्र और शत्रु तुम्हारा मन और तन के भाव है, तुम वास्तविक में इन सब से न्यारे हो और ईश्वर के प्यारे हो, ऐसी बात का तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हजारों हजारों ये देह रूपी वस्त्र तुमको मिले और तुमने बदले, वस्त्र बदलने में दुख कैसा, वस्त्र बदलने में भय कैसा, वस्त्र बदलने में चिंता कैसी। हाँ फिर भी भय होता है, जो बच्चा नन्ना है ना उसके कपड़े मैले कुचिले बदलो और अच्छे पहराओ तो अभी भी रोता है चीखता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है बुद्धिमान होता है तो मजे से वस्त्र बदल देता है। ऐसे जो बुद्धिमान हो जाता है वो देह रूपी वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाए, गिर जाए तो गिर जाए, पड़ जाए तो पड़ जाए, मर जाए तो मर जाए, ऐसा होगा ऐसा होगा, मर जाऊंगा, मर जाएगा तो क्या होगा, इसमें रात की लटकती हुई लोकल में जाए तो दोपहर के फास्ट से चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। भय को इतना खोपड़ी में घुसेड़ दिया कि कोई निंदा करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, ये मार डालेगा, वो मार डालेगा, कितना भी अपने देह को बचाओ ठीकरे को, एक दिन मरना है, और विदेही आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, तो फिर डर किस बात का, चिंता किस बात की। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे और क्यों करे। गई सो गई राख रही को तू अपना वर्तमान सुधार ले, वर्तमान में अपने आत्मदेव में आ जा तो भूतकाल तेरा अपने आप ठीक हो जाएगा, भविष्य अपने आप जख मार के ठीक हो जाएगा, और बेठीक लोगों की नजर से देखे लेकिन तुम अगर ज्ञान के सिंहासन पे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मंसूर को चूली पे चढ़ा दिया गया लेकिन लोगों ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया फिर भी नहीं बिगाड़ सके उनका, सुकरात को जहर पिला दिया लेकिन सुकरात का कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों कि जब आप अपना स्वयं नहीं बिगाड़ते तो दुनिया के लोग तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकते, और जब तक आप अपना स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते तो दुनिया के लोग और दुनिया की चीजों से परम कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आदमी अपना कल्याण करने में आप स्वतंत्र है और अपना अकल्याण करने में आप स्वतंत्र है। गीता कहती आत्मैवात्मनो बंधु आत्मैरिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मै शत्रुवत्। तुम अपने आप के बंधु हो अगर अपने चैतन्य घन परमात्मा में अपने मन की वृत्ति को लगाते और ज्ञान में रुचि करते हो तो तुम अपने आप के मित्र हो। अगर देह के ऐश आराम भोग विलास और संसार के तुच्छ भोगों में अपना समय शक्ति गंवाते हो तो याद रखो एक दिन आंसू बहाते हुए रक्त के आंसू गिराते हुए इस देह से जाना पड़ेगा और यहां किए हुए कर्मों का फल दूषित कर्मों का फल जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक कि दूषित कर्मों का फल तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। फिर महाराज असुर प्रेत भूत नारकीय योनियों का सामान संचय कर आदमी 84 लाख जन्मों का सामान एक जन्म में तैयार भी कर लेता है और अनंत जन्मों के संस्कार इसी जन्म में खलास भी कर सकता है। इसलिए ये जन्म आदि भी है और अंत भी है। ये जन्म कई जन्मों का कारण बन सकता है इसलिए ये आदि जन्म भी गिना है महापुरुषों ने और ज्ञान हो जाए तो कई जन्मों का ये अंत फैसला कर दे। इसलिए मानव देह अंतिम जीवन है। ये आपका अंतिम जन्म भी हो सकता है और आदि जन्म भी हो सकता है। अगर असावधान रहे तो कई माताओं के गर्भ में लटकने के कर्म हो जाएंगे और ये आदि कारण बन जाएगा और सावधान हो गए तो कई अगले कर्म काट के आप अपने निज स्वरूप में अनंत ब्रह्मांड में जो फैला है तुम्हारा शुद्ध शुद्ध निरंजन नारायण स्वरूप उसमें जग जाएंगे। फिर आपको इस देह से कोई विशेष सरोकार नहीं रहेगा। जैसे दूसरे के देह दिखते हैं ऐसा ही अपना देह दिखेगा। जैसे आप वस्त्र बदलते हैं बुद्धिमान होते हैं तो वस्त्र बदलने में संकोच नहीं होता है, ऐसे ये देह अगर आप छोड़ेंगे तभी भी आपको मोह माया देह मृत्यु के समय मरने के कारण दुख नहीं होता लेकिन शरीर बना रहे मैं भोगता रहूं खाता रहूं जीता रहूं ये आसक्ति होती उसलिए दुख होता है। माँ वस्त्र बदलती है तो वास्तव में बच्चे को दुख नहीं होता लेकिन ये कपड़े पड़े रहे ऐसी जब भ्रमणा होती तब दुख होता है। ऐसे ही मेरा ये दुकान बना रहे मेरा मकान बना रहे मेरा देह बना रहे मेरा फलाना बना रहे ये भ्रमणा होती है तभी भय होता है नहीं तो भय किस बात का। आत्मा का कभी बिगड़ नहीं सकता और शरीर का सुधर सुधर के क्या सुधरेगा जिसमें हाड़ है मांस है मज्जा है रक्त है वात है पीत है लीट है थूक है यही तो है शरीर और क्या है। थोड़े बाल हैं फिर मूछ के बाल कह दो दाढ़ी के बाल कह दो खोपड़ी के बाल कह दो रोम कोप कह दो ये बाल हैं और क्या है। बाल हैं नाक में भी बाल है लीट है थूक है वात है पीत है कफ है और क्या है। इसी को तुम मैं मान रहे हो तो कोई तुमको कह दे कि ए वात पीत कफ लीट थूक बाल इधर आओ तो तुमको अच्छा नहीं लगता है। जब तुम कोई अच्छा नहीं लगता तो अपने को ऐसा मानते क्यों हो भैया कि बाबा जी हम तो नहीं मानते लेकिन मनवाया गया तो अब हम छुड़वाते हैं तो तुम छोड़ने को तैयार हो जाओ। हरी हरी बोल पंजत अपने आप को जरूर प्यार करते जाना, तुम्हारे दिल में ही इस दिलबर को अपने आप को प्यार करते जाना, तुम्हारा दिल पावन हो जाएगा। तुम्हारा दिल अगर दिलबर के प्यार से पवित्र हो गया तो तुम सचमुच में सुंदर हो जाओगे। अगर देह को पफ पाउडर या और साधनों से सुंदर बनाने की कोशिश की तो खबरदार, कई नरकों में जाने का पासपोर्ट मिल जाएगा, होम डिलीवरी हो जाएगा। जय हो, जय हो। ये राम दीवानों की महफिल है, हरि के प्यारों की, सोहम के दुल्हारों की। अशरीरम शरीरेषु, शरीर में होते हुए भी अशरीरों वालों की महफिल है, देह में रहते हुए भी विदेही आत्मा में जगने वालों की महफिल है। ये ऐरे गैरों का काम नहीं। जय हो। सुना था 5213 वर्ष पहले वृंदावन में कुछ पागल और पगलियां झूम रहे थे, लेकिन आज साबरमती के किनारे भी उन पागलों के दीदार हो रहे हैं। हरी हरी बोल। रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा रुआ रुआ हरी मस्ती से शुद्ध हो रहा है। ओम 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 राम 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 ओम 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 ओम। अगर जीव पे पाप बैठा होगा तो ओम उच्चारण नहीं करने देगा, और हाथ पर पाप का प्रभाव होगा तो ताली नहीं बजने देगा, और दिल में पाप होगा तो दिल भर के लिए पिघलने नहीं देगा। अगर भगवान के नाम में तुम्हारा दिल पिघलता है तो पाप रूपी बिलाव रवाना हो जाएगा, और हाथ पर पाप का बिलाव का प्रभाव पंजा है, तुम कीर्तन करोगे तो भाग जाएगा, तुम राम नाम का खुरपा लो तो भाग जाएगा। जय हो प्रभु। चतुराई चूल्हे परी पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि भजन बिन चारो वर्ण चमार, सियावर रामचंद्र की जय। अहंकार ताली नहीं बजाने देगा, लेकिन अहंकार रूपी बिलाऊ को तुम कीर्तन का खुरपा मार देना। बिस्को बिस्को वाले दारू पीकर झूम सकते हैं, तो तुम राम नाम की शराब में नहीं झूमोगे तो कितना दुर्भाग्य होगा।
हरि ओम ओम गाए जा श्री नैया पार लगाए जा नैया पार लगाए जा तू प्रीति को बढ़ाए जा
प्रीति को बढ़ाए जा
तू खुद ही प्यारा हो जाएगा
खुद ही प्यारा हो जाएगा
जय हो हरि ब